ஹரி கிருஷ்ணா, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா, சாப்டர் 3, டெக்ஸ்ட் நம்பர் 16. கிருபையா இன் அத்தியந்த ஹி பவித்ர சப்தோங் கோ மேரே சாத் சாத் தோஹரானே கா பிரயாஸ் கீஜியே. ஏவம் ப்ரவர்த்திதம் சக்ரம் நானு வர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி ஏவம் ப்ரவர்த்திதம் சக்ரம் நானு வர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி ஏவம் ப்ரவர்த்திதம் சக்ரம் நானு வர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி ஏவம் ப்ரவர்த்திதம் சக்ரம் நானு வர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி ஏவம் ப்ரவர்த்திதம் சக்ரம் நானு வர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி ஏவம் ப்ரவர்த்திதம் சக்ரம் நானு வர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி ஏவம் ப்ரவர்த்திதம் சக்ரம் நானு வர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி ஏவம் ப்ரவர்த்திதம் சக்ரம் நானு வர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி ஏவம் ப்ரவர்த்திதம் சக்ரம் நானு வர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி ஏவம் ப்ரவர்த்திதம் சக்ரம் நானு வர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி ஏவம் ப்ரவர்த்திதம் சக்ரம் நானு வர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுர் இந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி. சப்தோகா அர்த்த தேக்கியே. ஏவம், ஏவம் மீன்ஸ் இஸ் பிரகார். இஸ் பிரகார் தோ கிஸ் பிரகார், ஜெய பகவான் அபி யஜ்ய கர்க்கு அப்ன ஜீவன் வியதீத் கரனே கே லியே பத்தாயா நா கே பகவான் நே 9 மே கஹா யஜ்ய அர்த்தாத் கர்மணோ நேத்ர லோகோ யா கர்ம பந்தன. तो तदर्थ कर्म कौन से है? मुक्त संग समाचार. तो अगर हम यज्ञ वाले कर्म नहीं करेंगे तो फिर जो भी कार्य करेंगे वो हमारे बंधन का कारण बनेंगे. इसलिए हमें यज्ञ अर्थात कर्म करने चाहिए जिससे हम मुक्त समाचार यानी इस मुक्त बहुबंधन से हमारी मुक्ति हो जाए. और भगवान ने बताया आगे कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रथविश्वध्वम एषवो स्विष्ट कामतु. के प्रजापति ने जीवों के साथ साथ यज्ञ भी संसार में भेजे ताकि हम यज्ञ करेंगे तो इससे सुख पूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने से के लिए जो भी हमारी इच्छाएं होंगी वांछित वस्तुएं होंगी वो प्राप्त हो जाएंगी. और आगे देवान भावयता देना तेरी वा भावयन्तु यह परस्परं भावयन्तः यहाँ परम आप कि इस तरह देवताओं को मनुष्य प्रसन्न करेंगे और देवता मनुष्यों को सुखी रखेंगे, और फिर ऐसे जब वो यज्ञ करेंगे तो उनका हृदय इतना पवित्र हो जाएगा कि श्रेय परम अवापना, जो रियल श्रेय है जीवन का, उसको वो प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होंगे, क्योंकि यज्ञ से हृदय शुद्ध हो जाएगा। और भगवान आगे कहते हैं 12 में, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता प्रधायेभ्यो यो भुंतिस्तेन एव स। कि अगर हम देवताओं ने जो हमें प्रदान किया है, जो कुछ भी हमें दिया है, फिर से देवताओं को नहीं देंगे, उन उपहारों को देवताओं को अर्पित नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से चोर होंगे। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने 13 में बताया, यज्ञ शिष्टाचरण संतो मुच्यन्ते सर्वज्ञ। बहुत ही सुंदर भगवान ने यहाँ पर श्लोक नंबर 13 में ये श्लोक हमें याद रखना चाहिए, और इसको हमेशा सदैव कंठस्थ रखते हुए जो भी खाए ना, भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाचरण संतो मुच्यन्ते सर्वज्ञ विषय घम पापा ये पचंत्यात्मकारण। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये तो भगवान ने यज्ञ करने का तरीका बताया कि यज्ञ करना है, और यहाँ से यज्ञ का चक्कर शुरू होता है नंबर 14 से। अन्नात भवंती भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। कि वास्तव में हम जो अन्न खाते हैं उसी पर आश्रित रहते हैं, और अन्न किससे आता है, वर्षा से आता है। वर्षा किससे आती है, जब हम यज्ञ करते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं तो वो वर्षा उत्पन्न करते हैं, या वर्षा यहाँ पर संसार में भेजते हैं। और वो किस लिए, क्योंकि हम नियत कर्मों को पालन करके यज्ञ करते हैं इसलिए। और आगे भगवान ने 15 में बताया, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियत कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा रहते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि वेद जो है वो साक्षात भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो जो यज्ञ हम करते हैं वो वेदों के अनुसार ही करते हैं, क्योंकि वेदों में नियत कर्मों का विधान है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो जो यज्ञ होते हैं वो वेदों के अनुसार करते हैं। तो फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा रहते हैं, यानी कि जो यज्ञ कर्म होते हैं वो अपवित्र नहीं होते, क्योंकि उसमें भगवान की उपस्थिति होती है। और आज भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तते चक्रम, कि इस तरह इस प्रकार जब यज्ञ का चक्कर प्रवर्तित, मतलब वेदों में स्थापित चक्रम, ये चक्र जो है ना कि अनाज, हम अनाज पे आश्रित हैं, अनाज वर्षा पर, वर्षा यज्ञ पर, तो ये चक्र एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयती है। नानु मतलब नहीं, अवर्तयती है यानी ग्रहण करता है इस जीवन में। अब जो इस तरह ये वेदों का चक्कर को फॉलो नहीं करता है, यह अगायुर इंद्रिया रामो, बहुत ही यहाँ पर खास बात बता रहे हैं। अघायुर, अघायुर का क्या मतलब होता है, आयु का मतलब होता है जीवन, और अघ कहते हैं अपराध, यानी उसके जीवन अपराधों से भरे हुए होते, उसका पूरा जीवन जैसे भगवान ने अघा असुर, यानी ऐसा असुर जो सिर्फ और सिर्फ अपराध करना जाता है, जानता है। और अघायुर का मतलब होता है ऐसा मनुष्य जिसका जीवन पूरा का पूरा अपराधों से भरा हुआ है। क्यों अपराधों से भरा हुआ है, क्योंकि वो जो भी कार्य करता है वो पापमय कार्य करता है, क्योंकि भगवान ने पहले ही बोल दिया भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकारण। जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, खाना बनाता है, वो भी पापमय जीवन गुजार रहा है, तो वो अगर यज्ञ नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली पापों से भरा हुआ है, क्योंकि रोज खाना खाता है, रोजाना अपराध करता है। और यहाँ पर 12 में तो भगवान ने ये भी बताया गया कि दत्तान प्रधाय भ्यो यो भुंगते तेन एव सा, कि जो इस तरह से देवताओं के ना ऋण को चुकाते हुए उनको अर्पित नहीं करता है तो वो चोर है। तो इस तरह जब वो चोर भी है और ये भुंजते थे तो हम पापम अपराध भी कर रहा है तो उसका पूरा जीवन पापमय होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंद्रियारामो मतलब वो सदैव इंद्रियासक्त, वो केवल और केवल उसको एक ही चीज खबर है कि मैं कैसे अपनी इंद्रियों की हवस को पूरा करूं। ना उसको यज्ञ खबर है, ना उसको शास्त्र खबर है, ना उसको वेद खबर है और ना उसको भगवान खबर है। केवल ये पता है कि मैं कैसे अपने जीवन को संतुष्ट करूं। तो इसको बोलते हैं इंद्रियारामो। एक होता है आत्माराम, यानी कि जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा की संतुष्टि से ही उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पर इंद्रियारामो यानी कि केवल इंद्रियों को ही संतुष्ट करना उनके जीवन का लक्ष्य होता है। मोघम, मोघम का मतलब होता है फिर तो जो इंद्रिय के लिए जी रहा है उसका जीवन तो बेकार है, वृथा है। पार्थ, हे वृथा पुत्र अर्जुन, सह जीवति, सह मतलब वह, जीवति का मतलब होता है जीवित रहता है, खाम खाम जी रहा है उसका, उसके जीने का कोई लाभ ही नहीं है। जीते 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 और भी कंगम स्थिति में पहुंचने वाला है, और भी अपराध में जीवन है। तो मनुष्य से भी जाएगा, फिर जानवर बनेगा, फिर पता नहीं कटर का खीरा बनेगा, क्योंकि वो अपने जीवन में जब मनुष्य बना है तो मनुष्य के लिए शास्त्र बने हैं, मनुष्य के लिए वेद बने हैं, तो उसको फॉलो करके ही उसको जीवन गुजारना चाहिए। कुछ बोलेंगे भाई हमें तो खबर ही नहीं थी कि हम है ना वेदों में जो इस तरह चक्कर लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम अपने जीवन को गुजारें, हमें तो खबर ही नहीं थी। अरे खबर नहीं थी तो क्या, तुम तो मनुष्य बने हो, कोई कुत्ता थोड़े रोड पे खड़े हुए कि तुम्हें खबर नहीं थी कि रेड सिग्नल पे क्रॉस करना होता है। नहीं, मनुष्य बने हो तुम्हारे लिए वेद है, मनुष्य बने हो तुम्हारे लिए शास्त्र है, मनुष्य बने हो तुम्हारे लिए गुरु है, मनुष्य बने हो तुम्हारे लिए श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें हमें पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, अगर हम सीखेंगे ही नहीं, तो हमें जाहिर सी बातें नहीं खबर पड़ेगी। और भगवान साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पर, मोघम पार्थ सजीवती, जीना ही, इसका जीना ही बिल्कुल बेकार है, उसको तो जीना ही नहीं चाहिए, जीते जी मर जाना चाहिए ऐसे मनुष्य को, जो कि शास्त्र अध्ययन नहीं करता, जो वेदों का पालन नहीं करता है, जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को नहीं गुजार रहा है, केवल जीने के लिए जी रहा है, केवल खाने के लिए जी रहा है। कुछ लोग खाली खाने के लिए जीते हैं, ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग को तो जीना ही नहीं चाहिए, खाम खा में जी रहे हैं वो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भगवान के वर्ड्स है, मोघम पार्थ सजीवति, मोघम मतलब बिल्कुल बेकार। अनुवाद देखिए, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्कर का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं। రూపం సాగ్రే జాతం సహగణ రఘునాథ వీతం తం సజీవం సాత్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాద సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్విత. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపిక కాంత శ్రీ రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచనం గౌరంగీ శ్రీరాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానో సుతదేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వంశకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైతం గదాధరం శివాసది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీమద్భగవద్గీతా మాత కీ జయ హో. तो आज भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रम वाइज हमें जो भगवान ने ये यज्ञ का चक्कर बताया है उससे हमें पार करना है. लेकिन यदि जो इस तरह से जीवन यानी वेदों के अनुसार जीवन नहीं गुजारता है, शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करता है, उसका जीना बेकार है. श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है कि खाली बस मनुष्य केवल कार्य करता रहता है. अगर देखा जाए आज के मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, सुबह से लेकर रात तक कार्य करता है और उससे जो उसको मिलता है, जो रिजल्ट वो चाहता है, वो केवल और केवल इंद्र तृप्ति है. इंद्र तृप्ति का आनंद कठोर परिश्रम, केवल यही दो लक्ष्य जीवन. अगर किसी भी आज हम किसी भी मनुष्य को देखते हैं ना, उसके जीवन के बस यही लक्ष्य होते हैं. ज्यादा से ज्यादा मेहनत, सुबह से लेकर रात तक काम 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 करो. भाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसी से मुझे इंद्र तृप्ति के भोग का साधन प्राप्त होगा. तो भगवान ने इस सांसारिक विचारधारा का ये तिरस्कार किया है कि ऐसा मनुष्य तो उसका तो जीना ही बेकार है ना, जो सिर्फ और सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए जीता. अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना आवश्यक है. जो खाली भले वो आत्म साक्षात्कार नहीं चाहते हैं, वो भले कृष्ण प्राप्ति नहीं चाहते हैं, अगर भोग भी करना चाहते हैं तो भी वेदों में जो यज्ञ चक्र लिखा हुआ है उसके अनुसार उनको कार्य करना पड़ेगा, उसके अनुसार ही उनको चलना पड़ेगा. और इस तरह से कर्म कांड करेंगे ना, जब वो कर्म कांड करते 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 फिर कर्म योग पर आएंगे, फिर कर्म योग करते 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 फिर बुद्धि योग पर आएंगे. इस तरह से क्रम से आएंगे. लेकिन यदि वो खाली अपनी इंद्र तृप्ति के विषय में सोचेंगे फिर तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं ना, फिर तो और भी नीचे नीचे चले जाते, और भी नीचे योनियां उनको प्राप्त होंगी. तो जो ऐसी विधि विधानों का पालन नहीं करता है, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत ही संकट पूर्ण रहता है. बिल्कुल उसका जीवन उसमें बहुत ज्यादा संकट, बहुत ज्यादा कष्ट आने वाले हैं यदि वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहा, यदि वो विधि विधानों का रूल्स का पालन नहीं कर रहा. प्रकृति के नियम अनुसार बहुत ही सुंदर यहाँ पर मानव शरीर के विषय में भगवान बता श्री भगवान जी बता रहे हैं कि आखिर आपको मिला क्यों है ये जन्म. प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। आत्म साक्षात्कार मतलब आप आत्मा हो, आप भगवान का अंश हो, और अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा करना, और पूर्ण की सेवा इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम का जप, भगवान की कथाओं का श्रवण और भगवान के नाम संकीर्तन और श्रवण में ही है। केवल यही भगवान की सेवा है सबसे बड़ी। तो इसके अतिरिक्त और कोई भी साधन नहीं है कलयुग में गति का। तो यह है आत्म साक्षात्कार, एकदम सिंपल। कोई बोले ना ज्ञान क्या है, तो बस ये चार लफ्जों में ज्ञान है कि आप आत्मा हो, आत्मा भगवान का अंश है, भगवान की सेवा करना उसका आत्मा का जीव का कर्तव्य है, और आज सेवा केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र के जप का कीर्तन, महामंत्र का कीर्तन और भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के वचनों का श्रवण, ये है भगवान की भक्ति। कम शब्दों में यदि बोला जाए, वैसे तो नवदा भक्ति का हम भागवतम में बहुत पढ़ते हैं। इसके यहाँ पर शीला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के नियमानुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, और उस आत्म साक्षात्कार को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग से, किसी भी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। आप कर्म योग करो यानी कि कार्य करो और उसमें भगवान को सम्मिलित कर लो, ज्ञान योग यानी अध्ययन करो, सीखो और उसमें भगवान को ऐड करो, या फिर भक्ति योग केवल अपने जीवन को कृष्ण के लिए समर्पित करो जो कार्य कर रहे हो भगवान। तो इन विधियों से हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इन यज्ञों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता, इन योगियों के लिए यानी कि जो ये योगी हैं, कौन से, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद ने साफ साफ बताया है इन योगियों में से किसी एक किसी के लिए भी यज्ञ संपन्न करने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं, क्योंकि ये केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। चाहे कर्म योग कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, ज्ञान योग कर रहे हैं तो भी भगवान की प्रसन्नता के, भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो पाप और पुण्य से परे विशुद्ध सत्वगुण में रहकर कार्य किया जाता है। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्कर के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता है, लेकिन जो भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें यज्ञ की यज्ञ जो पहले बताया गया, पूर्वोक्त मतलब पहले जो बता चुके हैं उसको संपन्न करना होता है। कर्म के अनेक भेद होते हैं, वो टाइप के कर्म होते हैं जैसे हम पढ़ते हैं कर्म, अकर्म, विकर्म, निष्काम कर्म, ये सब बहुत सारे कर्म होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, यानी कि अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हो तो केवल इंद्रिय की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। विषय परायण मतलब इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए जो काम किए करते हैं ना, वो होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती, फिर उनको ऐसे यज्ञ करने की आवश्यकता होती जिसे धीरे धीरे वो शुद्धिकरण तक आते हैं। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुक्त लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। अगर वो विषय उन विषय में आसक्त भी हैं लेकिन वो यज्ञ आसक्त में करते हैं तो फिर उनमें फंसते नहीं है, वो फल भी प्राप्त होता है लेकिन फल की अपनी इच्छाओं की पूर्ति में पूर्ति तो करते हैं लेकिन फिर भी विषयों के फल में फंसते नहीं है। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर करती है जिससे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि मनुष्य क्या सोचता है कि मनुष्य के इस संसार में संपन्न जीवन यानी बहुत ही खुश जीवन, सुखी जीवन गुजारने की विधि जो है वो मेरे प्रयासों से हो रही, मैं प्रयास कर रहा हूँ इसलिए मैं संपन्न जीवन गुजार रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ इसलिए मैं अपने परिवार को सुखी कर रहा हूँ, मैं सारा दिन सुबह से लेकर रात तक घरे की तरह मेहनत करता हूँ इसलिए मेरे बीवी बच्चे संतुष्ट लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं होती, हम नहीं कर रहे, अभी तो भगवान की पृष्ठभूमि योजना, यानी कि जैसे जैसे आपने कर्म किए हैं विगत जन्मों में उसी के अनुसार आपको यहाँ पर इस जन्म में फल मिल रहा है। ऐसा थोड़े है कि अगर आप बिरला की जितनी या फिर है ना इस संसार का जो सबसे बड़ा अमीर मनुष्य है उसके जितनी आप मेहनत करते हो तो आप भी उतना ही बड़ा इतना ही ज्यादा धन कमाओगे, ऐसा नहीं होता है। कोई है ना सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है और उसे बहुत ही कम धन प्राप्त होता है, और कोई सिर्फ ऑफिस में जाकर एक साइन करता है और उसको लाखों रुपए मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे परिश्रम से होता है, जो आपकी पृष्ठभूमि यानी कि जैसे जैसे कर्म किए उसके अनुसार वो आपको सब मिल रहा होता है। तो इस एक्स्ट्रा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, जो आपके नसीब में है जिस तरह दुख बगैर किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो रहे हैं तो उसी तरह से सुख भी आपके हिस्से का तो किधर जाएगा। तो उसके लिए एक्स्ट्रा पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रा अगर आपको मेहनत करनी है तो आत्म साक्षात करने के लिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आप करो चाहोगे तो आप सोलह माला करोगे, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है आपकी नसीब में कि आज आप सोलह माला करोगे। अगर आप चाहोगे तो आज आप ना श्रवण करोगे, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। ये भक्ति स्वतंत्र है, केवल इच्छा पर, इच्छा आप करोगे तो आप भक्ति कर सकते हो, लेकिन बाकी जो सुख और दुख आपके जीवन में वो आपकी इच्छा पर थोड़े निर्भर करते हैं। वो तो पृष्ठभूमि जो भगवान की योजना है, भगवान की पहले से प्लानिंग है, उसके अनुसार ही होती है। जिसे देवता संपादित करते हैं यानी देवताओं के अनुसार फिर वहां में मिलते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। फिर वेदों में देवताओं के विषय में बताया गया कि इस देवता को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ करो, इस देवता को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ करो। क्यों? ताकि शुद्धिकरण हो जाए, शुद्धिकरण होकर फिर हम कृष्ण भावानुभावित हो सकते हैं। और आगे श्री प्रभुपाद जी बताए अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावानामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ऐसा ऐसा वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है और कृष्ण भावनामृत में तरक्की करता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता है तो इस कोरी आचार संहिता, इसको कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। तो ये तो फिजूल है ना। आप यदि इसमें तरक्की करके कृष्ण को नहीं समझ रहे हो, कृष्ण की ओर नहीं बढ़ रहे हो, केवल जीवन की इंद्रिय तृप्ति आपके जीवन का लक्ष्य है, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कोरी आचार संहिता, खाली बस आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ये करके, यज्ञ करके। अतः मनुष्य को चाहिए कि आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु इसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करे। सिर्फ केवल आचार संहिता नहीं है, यज्ञ करके 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 केवल आप इस समाज में एक अच्छा इंसान बनना ही आपके लिए काफी नहीं है, बल्कि आगे और भी आगे प्रगति करके कृष्ण भावनामृत तक पहुँचना इसका लक्ष्य है। ये सारे यज्ञों के चक्कर का लक्ष्य क्या है कि आप धीरे 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 पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति यानी कृष्ण भावनामृत में आप पहुंचो, और यही जीवन का लक्ष्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।